परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अमरनाथ जी की कैसे स्थापना हुई? उस स्थान पर भगवान शंकर जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम उपदेश दीक्षा दी थी और वो गुप्त मंत्र बताया था। वो गुप्त मंत्र, ये 5 मंत्र है, 500 मंत्र उसको दिए थे पार्वती को, और पार्वती ने उन मंत्रों से जो भी लाभ प्राप्त हुआ तो पार्वती को हो गया। जब तक भगवान शिव की आयु है तब तक पार्वती भी उनके उस आयु तक वो अमर रहेगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी। अपने आत्मा अब उस अमर नाथ को देखन हम जावें या वहां माथा टेकन जावें तो हमें के लाभ होगा? ये यादगारें, ये तीर्थ स्थान तो ऐसे हैं जैसे पहले ये दास नगर नगर में जाकर एक सत्संग किया करते थे, शहर शहर में, और वहां सत्संग सुनाते थे, पंडाल लगाते थे, वहां भट्ठी लगाते थे, कोई सब्जी बनाते थे भगवान का भोग लगाने के लिए, अलुआ बनाते थे, और हम वहां सत्संग करके चले जाते और फिर बाद में कोई न्यू कहे कि चल तुझे दिखा के लाऊं कि वहां मुझे नाम मिला था, वहां संत रामपाल ने नाम दान किया था बहुत व्यक्तियों को और वहां खीर बनाई थी, हलवा बनाया था, हैं? तो वहां जाकर क्या देखेंगे कि वो ईंटों के चूल्हे पड़े पाएंगे, बट्ठी पाएंगी ईंटों की जो हम बनाया कर रोटी बना के और खा के अपना वहां पूरा काम करके अगले स्थान पर चले जाते। अब उन बट्ठियों ने दिखाकर कोई नौकर यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाया था, यहाँ नाम दिया करते, यहाँ सत्संग हुआ था। अब वहां ना तो सत्संग, ना हलवा, ना खीर, वह बट्ठी है। तो वो स्थान देखो जहां फिर सत्संग हो रहा हो तो सारी चीज मिले। तो अमरनाथ और ये जितने तीर्थ हैं ये तो वह भट्ठी हैं, वो तो ये चिन्ह है कि यहां ऐसा कुछ हुआ था कभी, अब वर्तमान में वहां कुछ नहीं है, केवल तुम पाप के भागी होते हो। इस एक ही उदाहरण से अन्य उदाहरण समझ लेना। अब धर्मदास जी को परमात्मा अपने अमृत में क्या बताते हैं, और जो साधनाएं धर्मदास जी तुम कर रहे हो ये बिल्कुल पापदायक है। कल आपने सुना के पृथ्वी ऊपर पग जो धारे कोट जीव एक दिन में मारे, करे आरती संजम सेवा ये अपराध ना उतरे देवा, ठाकुर घंटा पवन झकोरे कोट जीव सुख समसिर तोड़े, ताल मृदंग और झालर बजावे कोट जीव सुख समता पावे, धूप दीप और दर्पण अंगा अंत कोट जीव जरे विहंगा, एति हिंसा करत हो सारे कैसे दीदार करो करतारे। तुम इतने पाप करते हो और तुम खुद कह रहे हैं धर्मदास जी के जो जीव हिंसा करता है उसको भगवान दर्शन नहीं देता, जैसा कि आप व्यंग कर रहे थे मेरे ऊपर। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा मार पड़े दर्ग जमजेरा, ऐसा ज्ञान अचंभ सुनाऊं ये पूजा अर्पण विधि बताऊं। कहते हैं एक ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा अचंभित करने वाला, ये तेरी क्रिया भी सही होगी और तुझे पाप भी नहीं लगेगा, आपका पाप नाशक मंत्र भी आपको दूंगा। कोट जीव जल अचमन प्राणी या मैं संख शोभ नहीं जानी, कहो कैसे विद करो अचारम त्रिलोकी का तुम सिर भारम। राप्ति सूक्ष्म एक ही अंगा अल्प जीव जूनी जत जंगा, यो जत संग अभंगा होई कहो आचार सद है कहां लोई। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा है तो हाथी को मार दिया, ऐसा ही कोई सूक्ष्म जीव को आपने मारा जो आपने देखा नहीं। सभी का भगवान के दरबार में एक ही जैसा पाप है, वो आपके सिर पर लग रहा है। आगे क्या बताते हैं, जो अन्य साधक कैसे करते हैं। आत्म जीव हतै जो प्राणी सो का पावे मुक्त निशानी। जो जीव हिंसा करते हैं कहते हैं वो फिर भगवान को कृपा होंगे। कबीर जी कहते हैं उर्द पिंग जो झूले भेखा उनका कदे न सुलझे लेखा। अब जो साधक ये शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने वाले क्या करते हैं, कोई तो सिरासन करता ऊपर को पैर नीचे को सिर, और कोई पींग गाल लेते हैं एक झूला डाल लेते हैं उसके सारे खड़ा होकर तप करते हैं, मोटे मोटे पैर सूज जा पैरों में जख्म हो जाते हैं, ये डड़े ढो रहे हैं। और कोई ऊपर बैठ जाता ऊंचे से स्थान पैर उड़े चमटा गाड़ ले धूना ला ले और दूर तो दिखे दुनिया में महात्मा बैठा है। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पहाड़ टिल्ले पे, डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिनी झूल जग जाने यो बंदगी करे यो भक्ति करे अरबो है सूल बबूल। जनता तक बोली बाड़ी ने सोचा यो महात्मा बैठा हुआ अपनी भक्ति कर रहे हैं, ये तो अपने भविष्य में कांटे बो रहा है क्योंकि शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा कर रहा है। क्या कहते हैं उर्द पिंग जो झूल है भेखा, भेखा माने ये पंथ जिनका कदे न सुलझे लेखा, ऐसा ज्ञान सुनावे हूं ना कहीं भ्रमण जावे, गरीब दास जिंदा कहे है धर्मदास उर भावे। के अंदर तो सुन की चेष्टा कर, एक भाव बना मेरे से ज्ञान ग्रहण करने का, मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा कि तुझे धक्के खाने की जरूरत को ना। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद चौरासी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद चौरासी के, कट गे फंद चौरासी के रकट गे फंद चौरासी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद चौरासी के, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दोहड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दोहड़, ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फल चौरासी के। अब क्या कहते हैं वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, यानी भगवान की भक्ति करनी है कितने बैठ के कर ले वही साधना हो जाएगी, चलते कर ले बैठते कर ले। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि मेरी साधना करनी है तो वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है तो ओम करतु समर के लिए समर कर तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते समण कर, विशेष कसक के साथ समण कर और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के समण कर। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी वो भी यही तरीका है। सूक्ष्म वेद में लिखा है नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। कहते काम करते करते चलते फिरते उठते बैठते मालिक ने याद रखिए मंत्र जाप करता रहे। जैसे आप कहीं सफर कर रहे हो, दो घंटे बस में लगते हैं, अपना मंत्र आपको दे रखा है बैठ के सीट पे, और अगले डंडे बदल ले सिर, ये तो बात ना करे वहां से सुमन का करे डूंडा ठा दे। दो घंटे तक कति बड़ा बढ़िया समय मिल गया ना, उस समय को हम बर्बाद कर दे कि तो राजनीति की बतलाव की तो फलाने की को वह आंख पड़े देखे जो किया गया वही ढूंढ वही रूख वही वृक्ष उसमें के देखे, तो अपना भक्ति करे तो उस समय का सदुपयोग ऐसे होगा। ये एक जगह खड़े होकर तब करना, बर्फ मजाक खड़ा हो जाना, ये कहते ड्रामेबाजी है, ये भक्ति नहीं है। और हम उन्हीं को भक्त मानते थे जो इतना कठिन प्रयत्न करते थे, वो हमारी बालक वाली सोच थी। क्या बताते हैं, जरने बैठ जला बिंब धारा, संखों जीव करत प्रति आहारा, पंच अग्नि जो धूप ध्याना, जन्म तीसरे शुक्र समाना। अब कहते पांच दोने लगा के चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ जाता है। परमात्मा कहता है दोनों में कितने जीव जले वो उसके मस्तिष्क में लिखे जाएंगे, और वो दोने का तप उस साधना से कुछ उसको लाभ होना नहीं। कहते हैं ये तो यो साधना अलग है, जो तप अलग है उन तपों से जो उनको राज्य प्राप्त होता है, ये दोने फूकने तो नहीं। और राज्य पाकर फिर पशु योनि प्राप्त होता है, नरक में जाता है, तो उस तप से हमने कोई आवश्यकता नहीं तप करने की, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या बताते हैं, और कई क्या करते हैं, एक तिपाई ही बना लेते हैं, तिपाई के ऊपर एक गढ़ा रख लेते हैं पानी का भर के, उसके अंदर सुराख कर देते हैं सैकड़ों सुराख, और 100 गढ़े भरवा कर रख लेता है वो नाटकबाज नकली संत महात्मा, और अपने चेलों को कहता है सर्दी के महीने में कि ठंडे जल के दोनों गड़े जिसमें सुराख है, उस सुराख वाले तिपाई पर रखे गड़े के नीचे बैठ जाता है वो, और उसमें गद्दा है गद ऊपर मटका पानी डाले जाते हैं, और उसको जो है ना जल धारा बोलते हैं। कहते मैं साधना कर रहा हूं, खाक साधना कर रहा, ठंडा पानी पड़े वहीं इकट्ठा हो जाओ, वो पानी ये दिखे कितना कोरा होगा। भक्ति तो है कोई ना, भक्ति तो शांत मन से होगी, सारी सुविधा हो जैसे आराम से बैठे हो भगवान की भक्ति करता, और उसमें ऊपर तो बर्फ पड़े या दूना दौरे बैठे हो भक्ति कर सके, आँच इतनी बूंदी लागे इकट्ठा हो जा रहा है, लोग दिखावा ड्रामा करता है दुनिया को आकर्षित करने के लिए, अपने पेट की खातिर बकवाद कर रहा है। बजर दंड कर दम को तोड़े, वा तो जीव मर्त हैं करोड़े, निस्वा सिर जो धोनी फूके, ताम जीव असंको सुखे, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। ओय होय क्या बताते हैं कि जो तीर्थ करने के लिए निकलता है वो तो जन्म जन्म उलझ जाता है, इतने पाप उसके सिर पर रख दिए जाते हैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर जानी, और जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। अब दान करना वो तो जोड़ पाया तेने दान करना अपने घर के आसपास कर ले, और वहां जाकर दान करेंगे, वहां आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला, सूक्ष्म जीवों को, वो तो तेरे बैंक अकाउंट में अरपन वाडले डोने का कुछ भी कोई ना, उस जोड़ पर के रखे हैं तालाब में। हरियाणा में एक जींद शहर है, जींद के पास एक पंडारा गांव है, और उस पंडारे गांव में एक जोड़ है, इन ज्ञानहीनों ने नकियानों बता रखा कि उसमें नहा ले तो बेड़ा पार हो जाए, और उदाहरण के देते हैं बोला पांडव नहाया करते हैं, पांडुआ का हो गया बेड़ा पार, धके खांदे अंडे सारी उम्र दुख पाए, फिर हिमालय में जाकर गड़े और फिर नरक में डाल दिए गए, उनका हो गया बेड़ा पार। और उस पंडारे के जोड़ नाप देख लो, उसमें गधे भी पानी ना पियो, अरे ये भोली आत्मा, और कहाँ कहीं ठिकाना था नहीं, जैसे बका दिए डरते वहीं जावे और उसमें ना आवे, है तेरा गज वो, ये ऐसा जुलम कर रखा है इन अज्ञानियों ने, इस जीव का जन्म नाश कर दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। वह पर भी लेन जाते हैं, जो कुंभ का मेला भरता है कहीं, तो बताते हैं सुबह 2:10 पर परबी लगेगी और वह 1 घंटे तक रहेगी। उसके दौरान जो नहालेगा उसका बेड़ा पार है। अरे तुमने सैकड़ों पर भी नहाली थी तो बेड़ा पार हो गया नहीं, दुनिया दुखी हो रहे। और तुमसे पहले तो उस परबी में वो जीव जंतु पहले नहाने लग रहे, उनका तो कभी टाइम में ना उगता, तो वो पार हो जाएंगे। मूर्ख बना रखे आपको। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पर है भारम, गंगा जमुना गए किदारम। कहते वहां जाओ हो ना, गोते मारो, जितने गोते मारो उतने पाप कट्ठे। गोते गोते पड़ है भारम, यानी वहां से वहां तक पैदल गए वहां तक कितने पाप लगे, और 4 गोते गंगा में मार लिए तो पाप कट्ठे। गंगा में नहाने का केवल स्नान का लाभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कति नहीं। वो तो एक निर्मल जल है, सतलोक से आया हुआ है, वो तो पीने के लिए है, केवल उसमें नहाकर कल्याण नहीं हो सकता। ये अगर ऐसा होता तो गीता जी में लिख देते भगवान परमात्मा, 1-2 शब्द की तरह लिख देते गंगा में नहाका यो, तो उसमें नहीं लिखा है, तो विधान नहीं है प्रभु का। हमने केवल कल्याणार्थ गंगा पर नहीं जाना चाहिए, स्नानार्थ जा सकते हैं। जैसे वहां आसपास रहता है कोई आदमी, या किसी काम व साहब चले गए किसी वहां शहर में, आसपास गंगा बह रही है तो नहाओ, धो ठाट कर पानी पियो उसका, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल्याणार्थ या उससे कोई हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, इस उद्देश्य से जाओगे तो आप पाप के भागी यानी नाम रहित हो जाओगे। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। केदारनाथ लोहागर पुष्कर की आशा, अंत कोट जीव होत विनाशा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे है, जिनके कदे न कटे फंदे। ये फूल पत्ते तुलसी के पत्ते, और कहते हैं पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाओ ये ज्ञानहीन अंधे, और इनके कदे न कटे फंदे, जन्म मरण का रोग कभी नहीं कटेगा। काशी गया प्रयाग महोदय, बहुर जाए द्वारा ले दागू। काशी गया परियागू, बहुर जाए द्वारका ले दागू। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो दे उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते हैं कोई ये शिक्षा देता है कि काशी गया परियागू, बहुर जाए द्वारका में ले दागू। कहता हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, जो इस तरह भ्रमणा फैलाते हैं वो गुरु तो जूते खान जोगे हैं, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। कहते पेहुआ में पिंड वरण, पेवा में पेवा है हरियाणा में जोड़, क्योंकि उसमें ना जाने कितने पिंड वरण जावे हैं। और परमात्मा कहते मान लीजिए आपके विधान अनुसार आप कहते हो कि पिंड भरवाने से भूत जूनी छूट जाती है, और भूत जूनी छूट गई रो गदा बन गया, बता के कल्याण करवा दिया पिताजी का तूने। भूत जूनी जा छूटे है ये पिंड दान करंते, गरीब दास परमेश्वर कहे नहीं मिले भगवंत। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने कहा कि वो भगवान नहीं मिल सकता जिस विधि से तुम कर रहे हो। मान ले भूत जूनी छूट गई गदा बन गया, तो इस हमारी भक्ति से आपके पितर की पितर दुनिया भी छूट जाएगी, और उसके निमित्त विधिवत जो तुम आप क्रिया यहां कराओगे उससे उनका मानव शरीर भी संभव है, उनको मनुष्य जन्म भी मिल सकता है। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। सरजू कर स्नान हजू मम, अंत कोट जीव घाली दुम। सरजू नदी बनावे, कदर सब जगह ये यही आप पाप के भागी होते हो, पुण्य कति नहीं। पिंड प्रदान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। पिंड दान करने ते मोक्ष नहीं तुम्हारा ना तुम्हारे पितर का, भूत जुनी छूट जाएगी फिर। भूत योनि जा छूटे है पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जा, कहते वो एक काली सी बूढ़ी सी मूर्ति दिखी उस महल में उस मकान में, उससे मोक्ष हो जाएगा। गोमती और गोदावरी नहाई अड़सठ तीर्थ का फल पाई, कहते हैं गोमती और गोदावरी में जावे हैं तो अड़सठ तीर्थ में धके खाओ हो। नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना। जिन्होंने परम संत को नहीं पूजा की, उसको नहीं सेवा की, उसकी शरण में नहीं गए, तो ये सब आप जी की क्रियाएं व्यर्थ हैं। अब एक बात परमात्मा और साथ साथ कहते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले भड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूज त्या कोई साधु संत मिल जात। अब क्या कहते हैं कि तुम इन धार्मिक स्थलों पर जाते तो रहना जब तक तुम्हारे को यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि जैसे धर्मदास जी भटक रहा था, परमात्मा वहां पहुंचे। अब तीर्थ स्थान पर इंसान जाता है तो कुछ दिन फुर्सत होती है उसके पास, समय का निकाल कर जाता है, तो वहां परमात्मा मिल गए। धर्मदास जी ने भी समय था और मालिक तो थे ही थे। अब यदि किसी के घर पर जाकर मालिक ये ज्ञान देवे तो एक मिनट की फुर्सत नहीं। हाँ सुनो हो, वो पुरानी चीज काटिए, दुकान में बैठा होता लिया और दी दिए, हाँ जी ठीक से। अब वहां सुना को नहीं, तो वहां से वो फरी होकर जाता है। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के भटकते तो रहना तुम, लाभ कुछ नहीं है। एक लाभ हो सकता है कि उन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जावे, कोई पुण्यात्मा, कोई संत परमात्मा का भेजा हुआ कोई भक्त आपको मिल जाए, तो तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो पुण्यात्मा जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज्यादा रहेगी, तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को, एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे पुस्तक बांटने को, तो वहां कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे डड़े डोड़े, कुंभ का बेड़ा था। अब वो यहां आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट हो था और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहां कहां हम गए और ये पुस्तक वहां मिल गई। तो वो वहां मालिक के लिए गए तो मालिक भी पहुंच गए पुस्तक के माध्यम तक, मालिक में उसका ज्ञान उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते मेला ठेला जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते, और अन्यथा वहां जाने का कोई लाभ नहीं, वहां तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं वो जगन्नाथ, वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है, तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही, अड़सठ तीर्थ का फल पाही। तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में अड़सठ तीर्थ का फल मिल गया, और फिर और जगह तक क्यों खाते अंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना, कोटि यज्ञ अश्वमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही, धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या, जिन जान्या ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी, अब चौदस नौमी द्वादश वर्तम जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी चौदस नौमी द्वादश करे एकादशी संग जम सोई करुआ चौथ गदेरी होई। अठे सातें करें कंदूरी नीच के घर हो सूरी। कहे जो करुआ चौथ कहानी तास गदेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता रात जगावे होए जो पूता। करे कढ़ाही लपसी नारी बूढ़े वन सदा समेत घरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म तासंगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं। करुआ चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी अब नाम लिया जब आंखें खुलती इस ज्ञान से नोवली जी में करुआ चौथ का व्रत रखा हुआ था उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी और घर पर उसका शव आया टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं करुआ चौथ कहे जो कहानी तास गदेरी निश्चय जानी। जो करुआ चौथ करे हुए तो नरक में जावे जाएंगे। और पहले क्या करा करते कि करुआ चौथ की कहानी पांच चार बुढ़िया ने बैठ के को थोड़ी बहुत अक्सर ज्ञान माई होती बेबे बहन वह सुनाया करती या बुला लेते किसी गुरुआइन ने गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करुआ चौथ कहे जो कहानी तास गदहरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कह परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने क्योंकि शास्त्र विद साधना है। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम तासंगति डूबे सब नगरम। ओए होए अब जैसे दुर्गा का जहां जागरण होता है कहते उसकी संगत ते सारा बगड़ वो कॉलोनी वो मोहल्ला सारा का सारा डूबेगा। कैसे डूबेगा क्योंकि उनके गाने बजाने का जो तरीका है वो मन की खुराक है। मन ने कैसा ये तबले तबले बांध रखे हो अच्छे सुरीली गाने हो ढोलक पोलक टनक टनक और फिल्मी गाने हो तो उसकी जो तड़क भड़क ने देख के उसकी व्यवस्था ने देख कर वहां के जो गाने बजाने और आकर्षण ने देख कर आम व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और एक स्वभाव है प्राणी का कि जैसे हम जब तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है तो कोई जैसे मंगलवार का व्रत रख रहा कोई और कोई उसको कह दे भाई शुक्रवार का वो रखना चाहिए बहुत लाभदायक है वो शुक्रवार का भी शुरू कर दे और उससे उसने पता नहीं से लाभ क्यों होगा। एक बार एक बहन आई यहाँ पर वो अपनी उसकी बहन जो नाम ले रखी थी वो लेके आई इसको वो दूसरी जगह भी वहां कर रखा था उसका दूसरी जगह वह लेता आई उसने दोनों बोली जी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ। वो लाई किस लिए थी उसकी बहन कि उसका पति शराब पिया करता शराब पीकर उसने घना दुखी रखा करता पीटा करता घर से बाहर निकाल देता शराब के नजर बराब कुंडी लाकर भीतर सो जाता वह घड़ी में खड़ी रहती सारी रात सर्दियों में इतना दुखी कर रहा। और वो लाई थी नो कि तू नाम ले ले भगवान तेरी सुन लेगा वो शायद शराब भी छोड़ देगा थी। तो उससे वो कहने मैंने उनको बताया जिसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना ये नहीं करना वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूंगी 16 करने होते हैं। और उसकी कहानी उसने पहले बता दी उसकी बहन ने किसका पति दारू पीवा रोज पीटे गरना शाम ना कह। मैंने उससे कहा बेटी एक बात बता करुआ चौथ के व्रत इसकी कथा क्या है कैसे क्यों रखते हैं पता था है मुझे तो वह क्या बता है ना बोले जी एक बहन का पति विदेश चला गया था किसी अपने रोजगार के लिए फिर उसके घर याद ना रहा गणे दिन आया को नहीं फिर उसने माता ने दर्शन दिए इसने संतोषी माता ने अरवा ने बोली तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले तेरा पति आ जाएगा उसने शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए। 16वें शुक्रवार का जो व्रत था उस दिन उसका पति घर आ गया, उसने खुशी मनाई। मैं बोला नादान बेटी, तो उसका पति तो जा रहा था आ गया, बढ़िया होगी, तेरा रोज आवर घर तेरा दे ही तोड़े और तो फिर भी व्रत रखे, अकल की जा रही तेरी, तू तो इन शुक्र मनाए, 2 दिन ना हो तो बढ़िया है, हिसाब व्रत ढूंढ तो इन 2 दिन ना आवे, तब ने नो बेरानी वो व्रत क्यों रखे हैं, ये उस दिखा रहे हैं, इसका रिएक्शन है या एक्शन है। अब ये मालिक की एक वाणी है कि दुर्गा जान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्हों का आग्रह, ए जी मारा भी कर दियो तड़के, मारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे, क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है नहीं। और उठ के सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहां क्या था, एक बार एक इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का, जब नाम ले लिया था ज्ञान हो गया था, एक भक्त हमारा तो थोड़े से भगत थे, उसके घर पे गया हुआ था शाम को, फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बादल लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े पैदल आ रहे थे तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा है वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा गर्मियों के दिन थे, तो वहां शुरू कर रखे सारे बोलो जय माता जी, अगले बोलो जय माता जी, पिछले बोलो जय माता जी, मैं नहीं सुनिया जय माता जी, ए वो तो एक बहनों कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता जी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से थोड़े से नु देखने लगे, वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारे के देखे के करे, उसने वहां पौवा निकाला एक अद्धा बोतल उसका शराब का दराज मत है, और वह कैंपा खोली गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के, मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली बुटी, मैं नहीं सुनिया सारे बोलो तेरा के जो भाई। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई, क्या बताया, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास इस मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने ये सृष्टि रचना सुनाई है, सुन जानते हैं। धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम न्यारा। इन सब से अलग एक राम है, एक राम एकम, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसावो, भ्रम गए जग वेद पुराणा आदि राम का भेद न जाना। कहते सभी वेद पुराण मुड़ जो बैठे हैं उस पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, उस मालिक के भेद से परिचित नहीं है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, तुम्हारे इन तीनों भगवानों की उत्पत्ति कैसे जन्म हुआ, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी का, अब ये ज्ञान बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराण आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम परिभू सनातन परमात्मा, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला ही जाने। अब जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूं धर्मदास जी, जो कथा सुनाने जा रहा हूं धर्मदास, परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो सब परमाणुओं को देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, हृदय से लगाओगे इस ज्ञान को और स्वीकार करेंगे हमारे इस विधान को, और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, आंखा देख कर भी नहीं माने, वो तो मूर्ख है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा है, अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और पिताजी ज्योत निरंजन, ये काल भगवान सर्वपुरुष ये इनका पिता है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है, और वही बता रहे हैं कि पहले तो इस काल की उत्पत्ति की, ब्रह्म की, ज्योत निरंजन की, एक अंडे से, उसके बाद इस काल के उपरासक्त होकर सब प्राणी इसके साथ आना चाहते थे, सबसे पहले जिस आत्मा ने स्वीकृति दी उसको प्रकृति दुर्गा बना दिया। पहले की निरंजन राई ही, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। उस सुंदर लड़की को देखकर काल ने इसके ऊपर आसक्त हो गया, इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, और दुर्गा ने कहीं अपनी इज्जत को सुरक्षित ना देखा तो सूक्ष्म रूप बनाकर काल के पेट में चली गई। वहां से परमेश्वर से अर्ज की थी, परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत रूप में वहां प्रकट हुए थे और उस दुर्गा को निरंजन के पेट से निकाल दिया था, निकाल के और इसको निरंजन काल से कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा, तूने सतलोक सच्चे लोक में ऐसा जुल्म किया है, गलती की है, एक बहन बेटी को बुरी नजर से देखा है और इसको आलिंगन मत करने के लिए तूने इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा है, इसलिए तेरा नाम काल होगा। 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित आहार कराया करेगा, उनके सूक्ष्म शरीर से गंध को खाया करेगा, और निकल जा यहां से। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी ही, काल निरंजन दिन अनकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। काल ये ब्रह्म और ये दुर्गा, इन दोनों ने वह सतलोक में गलती की थी, उस मंद काम से, उस बुरे काम से ये गिरावट में आ गए, इस कारण से सतलोक से निष्कासित कर दिए। और हमने भी गलती की थी, हम अपने पिता को छोड़कर इस पर आसक्त हुए, उस मंद कर्म से हम यहाँ गिर गए। अब हम परमात्मा की इस विधि से हम फिर उस परमात्मा के पास जा सकेंगे। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। निरंजन और ये दुर्गा और अन्य हम प्राणी जितने थे, दुर्गा के अंदर बीज रूप में भगवान ने प्रवेश कर दिए थे, इसमें डाल दिए थे, और फिर दुर्गा के साथ इस काल ने पति पत्नी व्यवहार किया, यानी शादी की, जबरदस्ती ब्याह किया, और फिर इन तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई, रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु और तमगुण युक्त शिव जी को इन दोनों ने उत्पन्न किया, ये पति पत्नी रूप से, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के दोनों माता पिता हैं। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। इस काल के इस आहार को, इसको श्राप लगा हुआ है, इस आहार को तैयार करने में ये तीनों देवता प्रबंधक हैं। ब्रह्मा जी के अंदर रजगुण युक्त कर दिया, इसमें से एक ऐसी तरंग निकल रही है जो हम सबको इतना प्रेरित कर देती है, हम संतानों उत्पत्ति करते ही करते हैं जीव के बस का नहीं। और फिर यहाँ की सुख सुविधाओं की चाह भी रजोगुण से हम करते हैं, और सतोगुण से भगवान विष्णु को स्तोगुण कर दिया, इसके अंदर से निकल रही रेंज से हम एक दूसरे में मोह ममता सतीथी इसको कहते हैं ये, और शिव जी संहार करते ही हैं तमोगुण से। अब जैसे मिर्च, ये भगवान ऊपर रहते हैं अपने लोकों में, तीनों विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में, ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा के लोक में, और वहां से इन से निकल रही रेंज हम सबको प्रभावित कर रही है। जैसे दूर संचार प्रणाली है अपनी, इसका एक टावर लगा दिया जाता है, उस टावर की क्षमता होती है कि उससे निकलने वाली तरंगे उसकी रेंज कहां तक प्रभावित करती है, उसकी जहां तक रेंज है वहां पर उससे कनेक्टेड जो वो है मोबाइल अपना काम करते रहते हैं। अब साकार तो वो टावर वहां पर है और उससे निकल रही शक्ति सबको प्रभावित करती है। जैसे एक रसोई में मिर्चों का छोंक लगा दिया और दूसरे तीसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति भी उनको छींके आनी शुरू हो जाती, उनके बस की बात नहीं कि वो रोक सके। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने अपने विराजधानियां में रहते हैं, उनसे निकल रही ये मिर्च की तरह गंध या सुगंध या इनकी तरंग वासना हम सभी को इस तरह प्रभावित कर रही है, हमारे बस की बात नहीं। तो क्या बताते हैं, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे, पुरुष गम कैसे को पावे, है काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या, अलख निरंजन सुन ठिकाणा, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ओए होए, कहते हैं ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इस काल के इस सारे व्यवस्था को कर रहे हैं, और इन्हीं को भगवान मान कर ये भोली आत्मा धोखा खा रही है। अब क्या बताते हैं कि इसने इन तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक जो इंद्र का लोक है, और पाताल लोक जहां पर ये प्राणी है, तो कहते हैं पृथ्वी लोक पर जो कर्म करते हैं उनको पाताल और स्वर्ग लोक में स्थान देते हैं यहाँ के कर्म आधार पर। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तीन लोक अपने बेटों को दे रखा है इसने, सुत को, सुतों को, और खुद ये बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड के लास्ट यानी अंतिम छोर पर सुन शिखर में, ऊपर चोटी में बैठा है। और कहते हैं वह गुप्त रहता है, यह गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में सुन कहता है कि मैं ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे अव्यक्त को मुझे व्यक्ति मान रहा है, कृष्ण मान रहा है, आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण ना हूं, मत इसमें बोल रहा हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल अनुतम गटिया विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। वो तो गुप्त रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं, जैसे बादल छा जाते हैं और सूर्य बादलों की ओट में हो जाता है तो वो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहां विद्यमान है, वो छुप गया इन बादलों से। ऐसे ही परमात्मा ये काल भगवान भी व्यक्त है, वहां पर भी साकार है लेकिन अव्यक्त, इसलिए कहता है कि मैं छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। आता है तो भेष बदल के आता है, किसी का ब्रह्मा रूप में, किसी का विष्णु रूप में, किसी का शिव रूप में दर्शन दे दिए। तो हम भ्रम में पड़े रहे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र ही प्रभु हैं, कभी याचना करते ये काल आ जाता सामने विष्णु रूप में तो हम विष्णु जी को ही भगवान मान कर इन्हीं की साधना करते रहते। तो ऐसे क्या बताते हैं, अब तीनों देवता भी इस काल को ढूंढने की खोज करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको भी आज तक इसने दर्शन नहीं दिए। तीन देव सो उसको झावे, निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये बट पारा माने ठग है, यो काल है और तीन लोक के जीवों का अन्यत आहार करता है, ये अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिस के सुत है तीनों देवा, अंधर जीव करत है सेवा। ये इस काल के तीन बेटे हैं और ये ज्ञान नेत्रहीन अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी की। जैसा अभी आपको बताया था, शिवपुराण में प्रमाण दिखाया कि ये कहता है काल के ब्रह्मा और विष्णु के कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को स्वामी ईश मान लिया, ये बहुत गलत किया। तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए मैं यहाँ रण स्थान में आया हूं। और यही परमात्मा कह रहे हैं, 600 वर्ष पहले कहा करते थे, आज हमारी पुराणों में विद्यमान है। तो परमात्मा कबीर जी हैं जिन्होंने पुराण और वेदों को पढ़ा भी नहीं कभी, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान नहीं था उनको, जैसा हम आप कहा करते थे आप जी। और फिर भी उन्होंने वेद और पुराणों का ज्ञान दिया, तो वो परमात्मा है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्हा, काल पाए सभी गैलीन। अकाल पुरुष किसी ने नहीं पाया, इस काल को सबने भगवान मान रखा है। ब्रह्म ही परमेश्वर है, सब कुछ है। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतर पार। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सारी कथा सुनाई, ये ज्ञान दिया। पुणात्माओं, हमारे अंदर लोक वेद इतना गहरा घर कर चुका है, इतना ज्ञान सुन के परमात्मा ने प्रमाण बताए। शिवपुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, सर अब इतना समय नहीं, तो दास आपको दिखाता, फिर शाम को देखेंगे। अब यो वर्षों से लोक वेद सुन रखा था, धर्मदास जी कहने लगे, भगवान एक अर्ज है मेरी। परमात्मा बोले, बोल भाई, की अर्ज है तेरी? हे भगवान, वैसे तो आप जो कहोगे वो सही होगा, लेकिन मेरे मन में कुछ उथल पुथल हो रही है, आपकी आज्ञा हो तो मैं शंका समाधान करवाऊं। परमात्मा बोले, बोल भाई, पूछ। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, आपके तो ब्रह्मा विष्णु में ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बना मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने आरे से चरवा के और जीवित कर दिया भगवान ने। परमात्मा बोले, भाई एक बात बता, वही श्री कृष्ण भगवान था, उसका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ चक्रव्यूह में, तो भगवान श्री कृष्ण जीवित ना कर सके। अब धर्मदास जी ने देखा, एक फाड़ के सच्ची है, बात तो सही है। परमात्मा बोले, अरे शुभ दरा रो है श्री कृष्ण की बहन जिसका बेटा था, श्री कृष्ण रोवा बांडा मर गया, पांचों पांडवों का कुलनाश हुआ था, श्री कृष्ण ने जीवित क्यों ना कराया, वो जब समर्थ थे तो। अब धर्मदास तो मुंह बाया का बाया रहे, क्योंकि हमने तो एक तरफा ज्ञान सुन रखा था। तो परमात्मा ने कहा, अब मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सका। कि तामर ध्वज की आयु शेष थी बेटा, और उस कटे हुए शरीर को इतने ये शक्ति है, इनमें सिद्धियां हैं, ये तो एक गोरखनाथ जी में भी सिद्धि थी, इनमें भी सिद्धि है, और ये ऐसे कटे हुए के जीवित कर सकते हैं, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु का प्रारब्ध चक्रव्यूह में मरना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सका। तो समर्थ कहाँ रहा? और वेदों में लिखा परमात्मा अपने साधक की आयु बढ़ा देता है, श्री कृष्ण से आयु नहीं बढ़ी थी, इसलिए परमात्मा नहीं था। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट किया है कि यदि किसी भक्त की मृत्यु भी हो गई है तो परमात्मा उसको 100 साल की आयु तक जीवित कर सकता है, रख सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में भी यही स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा साधक की अपने भक्त की आयु बढ़ा देता है। अब धर्मदास ने सोची, फिर प्रश्न क्या किया कि हे भगवान, आप कह तो ठीक रहे हो पर मेरे मन में यह बात जचती को ना, मेरा यकीन सा ना हो रहा, क्योंकि पिछले जन्मांतर से लाखों लोगों से यही सुन रहा क्या कृष्ण इज गॉड, कृष्ण इज गॉड। परमात्मा बोले भाई ना यकीन आता तो बाढ़ में जा, अंतर ध्यान हो गया परमात्मा एकदम एड्रेस हो गया, इतना कुछ कह लिया फिर वही अड़ा खड़ा एक्टर टू। अब एकदम मालिक फिर दोबारा अंतर ध्यान हुए, फिर धर्मदास का कलेजा फट गया, रोन लग गया, नो कहे भगवान गलती होगी दाता, मत गणा नीच हूं, हे परमात्मा मैं पापी आत्मा हूं, मन फिर दर्शन दे दो, अब कभी भी वाद विवाद नहीं करूंगा। परमात्मा कहा करते थे कि वाद विवाद करना चाहिए, पर वाद विवाद की कुछ सीमा होती है, जब सारी बात बता दी प्रमाण दे दिए फिर नो कहे मेरे इतना जची, फिर कुह पढ़ना जची। अब क्या बताते हैं, जब धर्मदास जी ने देखा कि ईब के तो भगवान गणे रुष्ट हो गए, ये कद्दे नहीं मिले मेरे का, आंखों में पानी बुरी तरह रो, जैसे बालक रोया करे जिसके माता पिता दोनों मर जाए, छोटा सा बालक हो इस तरह रोए, मुंदा पड़ पड़ कर रोए, ऊपर ने देखा कि इधर देखे और नू देखे कहीं पीछे तो नहीं छुप गए मेरा। अब वो वृंदावन भी छोड़ दिया, वृंदावन से फिर बरसाने जाया करे, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से बरसाने जरूर जाते हैं, जो कहते हैं बरसाने में, कहते हैं बरसाने में राधा जी हुई थी और राधा जी की सिफारिश लुवाणी जब श्री कृष्ण मिल रहे हैं, ऐ थरा गजब हुई के तो के बना दी दंत कथाएं। अब वह ना तो राधा जी ना कृष्ण जी, और राधा जी की सिफारिश जब कृष्ण जी मिल भी गए तो फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो भी अपने कर्मों के दंड को भोगते रहते हैं, उनसे भी अपने पाप ना कटे, तीन ताप तोरों को काटेंगे कैसे, जैसे श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को चे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, कि जब उसको बंदर का मुंह लगा दिया था कि तू एक जीवन अपनी पत्नी की वियोग में बितावेगा, वो श्राप भी वो ना काट सका, सारा जीवन भोगना ही पड़ा। फिर श्री राम रूप में विष्णु जी ने मारा था सुग्रीव का भाई बाली को मारा था, और वो भी उसने भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त तीर, और भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार इस ज्ञान को भी समझकर नहीं मानते, सारा कुछ बता दिया फिर भी वो कहता है मेरे समझ में ना आई, तो दूसरा तरीका अपनाया परमात्मा ने। अब परमात्मा वहां से चल पड़े तो रोता है धर्मदास, तावा रोवत धर्म निनागर, कहां गए मेरे सुख के सागर। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप किसी एसी कमरे में बैठे हो और लाइट चली जा, फिर देखो पसीना पसीना बुरा हाल हो जा, तो ऐसे ही जब परमात्मा साथ बैठे थे उसकी आत्मा में अलग से एक उमंग थी, एक न्यारी खुशी थी, क्योंकि मालिक का गुण है जीव को स्वाभाविक, उसके आसपास बैठा हुआ व्यक्ति अब तक सुखी हो जाता, जैसे चंदन के पेड़ के पास स्वाभाविक उसमें से सुगंध निकल रही होती है। अब फिर वहां रोन लग गए। अब क्या कहता धर्मदास, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सारा ज्ञान सुनकर फिर ये बकवाद करने लग गया, सुन जनता क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे, मैं ना बानू बात तुम्हारी ही, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी, शंकर गौरी गणेश पूजाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। अब परमात्मा बोले अच्छा भाई इनकी कर ले तू, अपा चाले। अब फिर उसका समझ में आएगी, वो कोतरेगी, ऐसी स्थिति होगी जैसे एसी रूम में बैठे हुए की बिजली भाग जा और चारों तरफ तो बंद हो। तावा रोवत धर्म निनागर, कहां गए मेरे सुख के सागर। तावालीन भये निर्बानी मगन रूप साहेब सैलानी। परमात्मा एक दो मंत्र ध्यान हो गए। तावा रोवत धर्मनी नागर कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग होया हमसे ती जैसे निर्धन की लुट जा खेती। जैसे गरीब आदमी मुश्किल से खेती तैयार करे और उसने कोई लूट ले जा लफंडर, फिर वो सारी सारा एक वर्ष के लिए भूखा मरे, उसको बहुत दूर तक याद आती है, मरेंगे बच्चे भी भूखे मरेंगे। तो कहता है आज मुझे इतना कष्ट हो गया जैसे निर्धन की एक गरीब आदमी की कोई खेती चुरा ले जा, कणक ठा ले जा। ये भगवान आपके बिछड़ने से अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा वियोग हुआ हमसे ती जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे दसों दिशा को वो मगजोवे। रोवे अगर चल पड़ा मथुरा की ओर ना बांधोगढ़ की तरफ। कल्प करे और मन में रोवे दसों दिशा को वो मगजोवे। कभी इधर न देखे, कभी ऊपर न देखे, कभी भगवान आकाश में तो नहीं है, मेरे पीछे तो नहीं छुप गए हैं। फिर ढूंढा अमी से नाड़ी है तो ढूंढा ढंडा था वो खो दिया। इसी अकल हमारे अंदर कल्प करे और मन में रोवे दसों दिशा को वह मगजोवे। अब क्या कहता है धर्मदास, हम जाने तुम देह स्वरूपा हमारी बुद्धि अंध गर कूपा। ये भगवान अमनत आपको हमारे जैसी शरीर वाला मान लिया था, हमारी बुद्धि तो जेरे कुए जैसी अंधे कुए जैसी है मालिक, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं। हम तो मानुष रूप तुम जान्या सुन सतगुरु का किया पियाना। ये भगवान हमने तो आपको एक मानुष मान लिया था मनुष्य, ये परमात्मा आप चले कहाँ गए, एक बार बता दो मैं वहीं आ जाऊंगा। और क्या कहते हैं, बेग में लो कर हूं अपघाता मैं ना जीऊं सुनो विधाता। या मुझे जल्दी मिलो मेरे मालिक, और आप नहीं मिलोगे तब मुझसे जिया नहीं जावे। क्योंकि ये साधना तो मैं कर नहीं सकता, ये तो क्लियर हो ली, ये तो डड़े डोन वाली बात है और आगे का ज्ञान मुझे मिला नहीं। बेगी मिलो शिखर मिलो कर हूं अपघाता, नहीं मिले तो मैं आत्महत्या करूंगा। मैं ना जीऊं सुनो विधाता, अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया मैं जीऊं नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान सुना दिया जाता है जिया ना जावे। तुम सतगुर अवगत अधिकारी मैं नहीं जानी लीला थारी, तुम अवगत अविनाशी साई फिर मोको कब मिलो गुसाई। अब क्या होता है पुण्यात्मा, धर्मदास जी रोता हुआ अपने घर को आ गया। अब तीर्थ यात्रा में तो 6 महीने का टाइम था, वो होता था इनका 2-3 महीने अवश्य लगते थे, 1-2 तीर्थ को एक ट्रिप में करे थे। तो वो क्या देखा, उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी तो आमनी नाम था धर्मदास की धर्मपत्नी का, कि भगत जी तो 3-4 महीने के लिए टूर प्रोग्राम बना के गए थे, ये 10वें दिन उल्टे आ लिए, 5-7 1 हफ्ते में वापस आ गए 10 दिन में, और उसके निकट पहुंची कारण जानने के लिए। लेकिन धर्मदास जी ऐसे रो रहा जैसे माँ बाप मर जाया करे छोटे से बालक की, आंखें में तासू भीज कर सारा कपड़ा भीग गए, और रो एक बुरी तरह अड़पड़ कर अपने मकान के अंदर जाकर मुंधा गिर के और नो रो बुरी तरह, जिस तरह हाहाकार मचा के और बोलना चाहो बोला जा नहीं। उसकी पत्नी ने सोचा की बात होगी, भगत जी वापस आ गए। उसने आप आइडिया लाया कि